लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, नवीनता अर्थात अपने में नयापन लाने की चाह मानव के जीवन का वह बहुमुखी आयाम है जिसके लिए हर मानव हर क्षण अपनी कोशिश में लगा रहता है। नए जीवन का यह संदर्भ हमें सदैव नई चीजों को प्राप्त करने की एक अभिलाषा में व्यक्त होती है। हम समय के साथ अपने में नवीनता लाते हुए परिवर्तन लाने को लालायित रहते हैं, चाहे वह हमारा निवास स्थल, हमारे परिधान, हमारे खान पान और हमारे जीवन की भौतिक वस्तुएं ही क्यों न हों, जिनका उपयोग हम अपने रोजमर्रे के जीवन में करते हैं। हमारे जीवन की नवीनता समय और समय की जीवन शैली के अनुसार बदलती जाती है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में बहुधा विकास का मापदंड देते हैं। उदाहरण स्वरूप, हम अपने उन परिधानों का उपयोग नहीं करते जिन्हें हमने आज से 10 या 5 साल पूर्व किया था। जिस मोबाइल फोन का उपयोग हमने आज से 5 साल पहले किया था, वह आज हमारी जेब में शायद ही होगा। यही बात हमारे दूरदर्शन और यातायात के साधनों में भी होती है। अतः मानव जीवन की पुरानी चीजें समय के साथ बदलती और हम समय के साथ बदलते जाते हैं। श्रोताओं, 40 के 5वें रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमारे लिए नवीनता नए जीवन की विषय वस्तु का बोध कराता है। ईश्वर हमें नया जीवन देने की चाह रखते हैं और इसके लिए वे स्वयं हमारे जीवन में रोज दिन हमें अपने प्रेम का एहसास दिलाते हैं। आइए हम सुसमाचार में ईश्वर के जीवनदायी वचनों का श्रवण करते हुए अपने आप से पूछें कि क्या हम अपने को ईश्वर के नए जीवन हेतु खुला रखते हैं? क्या हम में ईश्वर से आने वाले नए जीवन की ललक है? क्या हम अपने में नवीनता लाने का एहसास करते हैं?
मरियम उस जगह पहुंची जहां ईसा थे। उन्हें देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ईसा उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते हुए देखकर बहुत व्याकुल हो उठे और आह भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहां रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु, आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो, यह उसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, इन्होंने तो अंधे को आंखें दी, क्या यह उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने उससे कहा, प्रभु, अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर अंगोछा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें ईश्वर की पुकार को सुनने में मदद करे, जिससे हम अपने में आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित होने की आवश्यकता का अनुभव कर सकें, क्योंकि यह हमारी आध्यात्मिक सचेतना है जो जीवंत ईश्वर को प्यारी लगती है। श्रोताओ, नबी इज़ेकियल के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए यहवे को जीवनदायी ईश्वर के रूप में प्रकट करता है। वे अपनी चुनी हुई प्रजा को नया जीवन देने की प्रतिज्ञा करते हैं। नबी इज़ेकियल के ग्रंथ का यह भाग हमारे लिए इसराइल की सूखी हड्डियों को जीवन मिलने की चर्चा करता है, जिसे यहवे नया जीवन देते और उनके देश में पुनः स्थापित करते हैं। आज के पहले पाठ में ईश्वर हमें अपनी कब्रों से निकालकर जीवन देने की बात कहते हैं। श्रोताओ, यह हमारे जीवनदाता ईश्वर की सर्वशक्तिमता का बखान हमारे लिए करता है, जहाँ भी अपने प्रेम में हमें अपने मरणशील अवस्था में यूं ही पड़े रहने नहीं देते, बल्कि वे हमें सदैव जीवन देने की पहल करते हैं, जिससे हम अपने जीवन के द्वारा उनकी महिमा और स्तुति कर सकें। अपने दैनिक जीवन का पुनरावलोकन करना हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि कितनी बार हम अपने जीवन की तकलीफों और कठिनाइयों के कारण हताश, निराश, घबराए और अपने में डरे हुए रहते हैं, लेकिन ईश्वर वैसी परिस्थितियों में हमारे जीवन में आते और हमें अपनी बाहों में उठाते हुए हमें सांत्वना प्रदान करते हैं। वे हमें अपनी आत्मा से पोषित करते जो हम में जीवन का संचार करता है। श्रोताओ, इस तथ्य को रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ और अधिक गहराई से जानने और समझने में हमारी मदद करता है। ईश्वर हमें अपनी मृत अवस्था हमारी कब्रों से बाहर निकालकर नया जीवन देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को मृत्यु से पुनर्जीवित कर हमारे लिए दिया है। यह पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त की आत्मा है जो हम सबों में निवास करता है, जिसके कारण हम अपने को भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि अपने लिए उन आध्यात्मिक चीजों की खोज करते हैं जो हमें अनंत खुशी प्रदान करती है। इस तरह पुनर्जीवित यीशु में हमें दिया गया आत्मा का अनमोल वरदान हमारी शारीरिक मृत्यु के बाद भी हमें जीवित होने में मदद करता है, क्योंकि हमने आत्मा की प्रेरणा में अपने विश्वास के जीवन को भले और नेक कार्यों के रूप में जिया है। विश्वास में हमारे भले और अच्छे कार्य इस भांति हमारे लिए नए जीवन का कारण बनते हैं। श्रोताओ, आज के सुसमाचार में लाजरुस का मृतकों में से पुनर्जीवित किया जाना हमें स्वयं यीशु ख्रिस्त के मृतकों में से जी उठने की महान घटना की ओर इंगित कराता है। यीशु ख्रिस्त अपने प्रिय मित्र को, जिनके संग उन्होंने अपने मानवीय जीवन को साझा किया, मृतकों में से जीवित करते हुए मार्था और मरियम की पारिवारिक खुशी को बहाल करते हैं। यह हमें इस बात को समझने में मदद करती है कि यीशु ख्रिस्त, जिनके संग हम सदैव मित्रता में जुड़े रहते हैं, हमें भी सदैव नए जीवन से साराबोर करते हैं, क्योंकि वे हमें शर्तहीन प्रेम करते हैं। पुत्र यीशु ख्रिस्त का लाजरुस को जीवन दान हमें स्वर्गीय पिता ईश्वर की महिमा को प्रकट करता है। इस चमत्कार के द्वारा यीशु अपने अनुयायियों को जीवनदाता पिता ईश्वर और उनके द्वारा भेजे गए मुक्तिदाता स्वयं अपने ऊपर विश्वास करने का निमंत्रण देते हैं। लाजरुस को जीवन दान हमें यीशु ख्रिस्त की दिव्यता पर विश्वास करने का आह्वान देता है, यह हमें यह प्रकट करता है कि वे स्वयं सच्चे जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, जो मानव जाति को संपूर्ण जीवन देने हेतु आए। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की माता कुमारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा निवेदन करें कि वे हमें हमारे अविश्वास, संदेह और पाप रूपी बुराइयों के कब्र से बाहर निकलने में मदद करें, जिससे हम उनमें विश्वास कर सकें जो हमें सदैव ही एक नया जीवन देने को आतुर रहते हैं।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। प्रभु के शरीर धारण के संदेश महापर्व दिवस पर संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासों को याद दिलाया है कि किस तरह मरियम के हां ने मानव के अभिमान पूर्ण नहीं को नष्ट कर दिया। संत पापा ने 25 मार्च को अपने ट्वीट संदेश में लिखा, प्रभु के शरीर धारण के संदेश के समय मरियम के हां के कारण ईश्वर हमारे बीच निवास करने आए। यह इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण हां है, एक विनम्र हां जो उत्पत्ति ग्रंथ के घमंड को नष्ट करता है, एक ईमानदार हां जो अवज्ञा को चंगा करता है और एक तत्पर हां जो अहंकार को पलट देता है। आज ही के दिन पिछले साल रूस और यूक्रेन में शांति बहाल करने हेतु इन देशों को निष्कलंक कुंवारी मरियम को समर्पित किया गया था। संत पापा ने इसकी याद दिलाते हुए माता मरियम से शांति के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट संदेश में लिखा, आज मैं पिछले साल के 25 मार्च की याद कर रहा हूं, जब हमने सभी धर्माध्यक्षों, पूरी कलीसिया और मानवता के साथ खासकर रूस और यूक्रेन को धन्य कुंवारी मरियम को समर्पित किया था। आइए हम शांति की महारानी से शांति के लिए प्रार्थना करने से ना थकें। संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को पोलैंड के ऐसे परिवारों से मुलाकात की जिनके प्रियजन कोयले की खान में काम करते हुए अप्रैल 2022 की दुर्घटना में मौत के शिकार हो गए। दक्षिणी पोलैंड में पिछले साल के अप्रैल माह में दो कोयले खानों में हादसा में करीब 18 लोगों की मौत हो गई थी तथा कई लोग घायल हो गए थे। 20 अप्रैल को प्लेनियो का खदान में 10 खनिकों की जान चली गई थी, जब उस स्थान पर एक झटके के कारण मीथेन गैस निकल गई थी और 3 दिनों बाद बोरेनी का जोफियो का खदान में 8 लोगों की मौत हो गई। संत पापा ने शुक्रवार को खान हादसा के शिकार लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की और उनके प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया, साथ ही उनके लिए मौन प्रार्थना की तथा हर एक से व्यक्तिगत मुलाकात करने से पहले उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। वैटिकन संचार विभाग ने धर्म बहनों के साथ और धर्म बहनों के लिए पेंतेकोस्त परियोजना के हिस्से के रूप में ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रस्ताव रखा है, जिसमें धर्म बहनें मुफ्त में ट्रेनिंग कर सकती हैं। पेंतेकोस्त प्रोजेक्ट पहल के तहत वैटिकन संचार विभाग धर्म बहनों को एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का अवसर प्रदान कर रहा है, जो मुफ्त होगा तथा संचार से संबंधित सबसे प्रासंगिक वर्तमान मुद्दों पर आधारित होगा। वैटिकन संचार विभाग की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि इच्छुक धर्म बहने 21 अप्रैल 2023 तक ईमेल पर आवेदन कर सकती हैं। इसकी अधिक जानकारी वेबसाइट में मिलेगी। और संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार को मिलान महाधर्म प्रांत के रो पल्ली के विश्वासियों से वैटिकन में मुलाकात की, जो तीर्थयात्री के रूप में रोम आए हैं।
कलीसिया अनेक सदस्यों से बनी है। सभी सदस्य एक दूसरे की सेवा में समर्पित हैं और एक ही प्रेम से प्रेरित हैं, अर्थात ख्रिस्त के प्रेम से। इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासों को याद दिलाया है कि विविधता की इसी सुंदरता और समृद्धि तथा एकता के साथ वे यीशु को दुनिया को दे सकते हैं। उन्होंने कहा, यह सबसे प्रभावशाली माध्यम है जिसके द्वारा आप शब्दों से पहले सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। संत पापा ने उन्हें भाईचारा, प्रेम और एक दूसरे के प्रति विश्वास के रास्ते पर एक साथ आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया।
संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 25 मार्च को वाटिकन में बुर्किना फासो के राजदूत श्री रेजिस केविन बाकियोनो का स्वागत कर उनका प्रत्यय पत्र स्वीकार किया। श्री रेजिस केविन का जन्म 7 मई 1977 को ट्रेचविले आइवरी कोस्ट में हुआ था। वे शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं। वे फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाएं बोलते हैं। उन्होंने देश विदेशों में अपनी सेवा प्रदान की। वर्तमान में वे अफ्रीकी और बुर्किनावे एकीकरण के प्रभारी मंत्री के तकनीकी सलाहकार क्षेत्रीय सहयोग के प्रभारी प्रतिनिधि हैं। उधर पवित्र भूमि यरूशलेम के लिए वार्षिक संग्रह का समय नजदीक आने के साथ संत पापा फ्रांसिस ने पूर्वी कलीसियाओं के लिए गठित विभाग से पवित्र भूमि के ख्रिस्तीय समुदाय के साथ एकजुटता के निमंत्रण को नवीनीकृत करने का आह्वान किया। दुनिया भर के धर्माध्यक्षों को संबोधित एक पत्र में पूर्वी कलीसियाओं के लिए गठित परम धर्मपीठ विभाग के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष क्लाउडियो गुगेरोटी विनाशकारी भूकंप को याद करते हैं जिसने सीरिया और तुर्की में विनाश लाया, उसे यरूशलेम तक महसूस किया गया था। महाधर्माध्यक्ष लिखते हैं, सीरिया में लंबे युद्ध और हाल के भूकंप ने एक बार फिर से प्रतिभूतियों की नाजुकता को उजागर कर दिया है जिसके लिए मानवता अपनी आशा रखती है और हमें क्रूस पर मारे गए और जी उठे ख्रीस्त के पास्का में ईश्वर की प्रतिष्ठा की चट्टान में जड़े जमाने की इच्छा को और अधिक मजबूती से महसूस कराती है। यरूशलेम में कोड़े मारे गए यीशु को समर्पित गिरजाघर में इस साल की शुरुआत में मसीह की एक छवि के अपमान को याद करते हुए महाधर्माध्यक्ष लिखते हैं कि टूटा हुआ क्रूस हमें अपने बहुत से भाइयों और बहनों के दर्द को पहचानने के लिए आमंत्रित करता है जिन्होंने अपने प्रिय जनों के शवों को देखा जो मलबे के नीचे दबे या बमों से मारे गए। महाधर्माध्यक्ष क्लाउडियो पौत्र भूमि के फ्रांसिस्कन और अन्य लोगों के काम की प्रशंसा करते हैं जो पीड़ितों की हर तरह से सहायता प्रदान करते और जरूरतमंद लोगों की देखभाल करके आशा के स्रोत बने हुए हैं। महाधर्माध्यक्ष गुगेरोटी ने धर्माध्यक्षों और सभी विश्वासियों को पवित्र भूमि के लिए इस पवित्र शुक्रवार संग्रह में उदार होने के लिए आमंत्रित किया और संत पापा फ्रांसिस के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। पवित्र शुक्रवार का वार्षिक संग्रह संत पापा की दुनिया भर के विश्वासियों और पवित्र स्थानों के बीच एक मजबूत बंधन बनाए रखने की एक पहल है। संग्रह पवित्र स्थानों के संरक्षण और पवित्र भूमि में ख्रिस्तियों की उपस्थिति को बढ़ावा देने में पवित्र भूमि के फ्रांसिस्कन संरक्षण का काम करने का समर्थन करता है और पुरोहितों, धर्मसंघियों, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रशिक्षण और कलीसियाओं के लिए प्रत्यक्ष समर्थन एवं पूर्वी कलीसियाओं के क्षेत्रीय विभाग की भी सहायता प्रदान करता है। उधर ड्रोन हमले में एक अमेरिकी ठेकेदार और 5 सैनिक के मारे जाने के बाद अमेरिका ने सीरिया में लक्ष्यों के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए। उत्तर पूर्वी सीरिया में हसाका के पास एक ठिकाने पर ईरानी ड्रोन के हमले में उनके एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई। इस हमले में अमेरिका के 5 सैनिक और एक अन्य कॉन्ट्रैक्टर भी घायल हुए। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।